Om Shanti। तो आज का हमारा विषय है क्या है? वृक्कासुर भस्मासुर। और आज का हमारा स्वमान क्या है? मैं एक शुद्ध बुद्ध विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और आज के मुरली में मीठे बच्चों को पहली पहली लाइन में बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई में गफलत नहीं करो। तो फिर क्या करो अगर गफलत नहीं करो? तो आगे की लाइन क्या थी? अपनी झोली भरो अविनाशी ज्ञान रत्नों से। तो कौन सी झोली होती है जिसमें अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरते हैं? बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान ठहरता है। और उसमें भी सिर्फ बुद्धि नहीं, स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ होगी तो ज्ञान ठहरेगा, शुद्ध होगी तो ज्ञान ठहरेगा। कौन सा? रूहानी। और अशुद्ध होगी तो दुनियावी ज्ञान ठहरता रहेगा, लेकिन रूहानी आध्यात्मिक ज्ञान उसमें नहीं ठहरेगा। तो फिर आज की मुरली में दादियों की डायरियों से भी कुछ चुने हुए वाक्य थे, उसमें भी सारा जोर बुद्धि पर ही था। बुद्धि को क्या नया टाइटल मिल गया था आज के उन महावाक्यों में? बहुत बड़ा टाइटल वो दादियों के पन्नों में था कि बुद्धि क्या है? सर्व इंद्रियों की शिरोमणि है। जैसे हम सर्व शास्त्रों में गीता को शिरोमणि बताते हैं, तो सर्व इंद्रियों में कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया हमारे पास है, जिसको हम 10 कहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार भी क्या है? सूक्ष्म इंद्रिया कहते हैं ना बाबा। तो इन सभी इंद्रियों में अगर कोई शिरोमणि है तो वो है बुद्धि। तो मेरी बाकी सारी इंद्रियां ठीक से कार्य कर सके उसके लिए मुझे सारा फोकस किस पर करना होगा? बुद्धि पर। क्योंकि वो क्या है? सर्व इंद्रियों की शिरोमणि। उसको ठीक करते ही बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेंगे। तो कैसे ठीक करना होता है बुद्धि? तो हम इस वृक्कासुर भस्मासुर की कहानी से समझेंगे। वृक्कासुर भस्मासुर एक ही हस्ती का नाम है। वर पाने के बाद वो भस्मासुर बना है, पहले वो था वृक्कासुर। और वृक्कासुर का मतलब क्या होता है? ये दो शब्द संधि विच्छेद करते हैं ना हम कभी भी, तो वृक्कासुर का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द कौन से मिलेंगे? वृक प्लस असुर, है ना? भस्मासुर को संधि विच्छेद करेंगे तो भस्म प्लस असुर। और असुर माना क्या? असुर माना क्या? मुरलियों के हिसाब से बताओ, बाबा क्या कहते हैं? तुम सत्युग में कौन सी बुद्धि थी? दैवी। संगम में ईश्वरीय बुद्धि श्रेष्ठ, और द्वापर से आसुरी बुद्धि। तो शास्त्रों में कहानियां किसकी है? द्वापर से जो चले आए और फिर आके हम संगम पे पहुंचे, क्योंकि वहां पर श्रेष्ठ बुद्धि थी हमारी, फिर हमारी आसुरी हो गई, फिर बाबा आए, अब दोनों का झगड़ा चल रहा है। पहले तो दोनों थी नहीं ना, उस सतयुग से लेकर त्रेता तक एक ही प्रकार की बुद्धि थी, फिर द्वापर से कलयुग में एक दूसरे प्रकार की मायावी बुद्धि एक प्रकार की थी, लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आ गए तब ये दोनों काम कर रहे हैं ना हमारे, दोनों दोनों काम कर रही है। तो वृक माना, वृक का अर्थ होता है, वैसे अगर डिक्शनरी में आप देखने जाएंगे वृक का अर्थ तो भेड़िया भी आता है, और भेड़िए की कहानियां तो बचपन में बहुत सुनी है कि भेड़िए की अक्लमंदी कौन सी होती है, अक्लमंद प्राणी कहा गया है उसको, लेकिन कैसी अक्ल है उसकी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का सर्वनाश करना ये उसकी बुद्धि है। और बहुत सारी कहानियां बचपन में बच्चों को सिखाई जाती है जिसके द्वारा मोरल सिखाए जाते हैं कि हमें दूसरों का सर्वनाश करने वाली बुद्धि नहीं बनानी चाहिए अपनी। तो वृक तो बुद्धि माना ही, फिर बाबा के ज्ञान में आए तो पता चला मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, संस्कार क्या होता है। पहले पता था, कभी पहले सोचते भी नहीं थे कि आज मुझे ये संकल्प आया, ये तो बाबा के पास आने के बाद हमारी भाषा बदलती है। पहले कभी सोचा था ऐसे संकल्प करना और वो करना, मेरे मन में संकल्प आ रहे, ये तो बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारी भाषा ऐसे बनती है। तो यहाँ आए तो हमें पहले दिन लेसन मिला मन बुद्धि का ही, मतलब आत्मा का मिला, और उसमें हमें बताया उसके पास तीन फैकल्टीज है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, और तीनों के फंक्शन बताए गए हमें। तो बताओ क्या है मन का फंक्शन, सोचना, और भी कुछ फंक्शन है। चलो बुद्धि का क्या फंक्शन है, क्योंकि अभी इसके पहले बुद्धि वाला ही क्लास किया है आप सभी ने, हा? तो आंसर देना इजी होगा अभी, हाँ, एनालाइज करना और तर्क करना और विजुअलाइज करना और समझना और महसूस करना और परखना, और परखेंगे तो फिर डिसीजन भी देंगे। तो मन क्या करता है, सोचता भी है और ऑप्शंस भी क्रिएट करता है। देखो मन में कभी कोई बात हुई, समझो मेरे जीवन में कोई सिचुएशन आई, मैंने बचपन से लेके आज दिन तक चाय नहीं पी, अभी मैं किसी गैदरिंग में हूं, सब लोग चाय पी रहे हैं, मुझे भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन मैंने आज दिन तक चाय नहीं पी, तो सीधे से हाँ निकलेगा, अंदर में क्या होगा, पियूं कि नहीं पियूं, पियूं नहीं पियूं। तो मन ने क्या किया, ऑप्शन क्रिएट किया, ये पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, बुद्धि को पूछ रहा है, आज दिन तक तो नहीं पिया, अभी ऑफर आया है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, सामने से जोर भरा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो बुद्धि क्या कर रही है, ये जो दो ऑप्शन रखे गए हैं उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगी वो। तो बुद्धि का काम है टू चूज, टू सिलेक्ट। हम कई बार एग्जाम्स देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आपको दिमाग सिर्फ चूज करने के लिए चलाना है, ऑप्शन क्वेश्चन के आंसर के रूप में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन का काम करना है, और वो सिलेक्शन किस आधार से करेंगे, बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उस आधार से आप सिलेक्शन करेंगे। तो ऐसे ही वृक का अर्थ होता है, एक तो बताया भेड़िया जिसकी अक्लमंदी कैसी है वो बताया, फिर वृत्त शब्द का भी संधि विच्छेद अगर करेंगे तो एक शब्द मिलेगा वृ और दूसरा मिलेगा क। तो वृ शब्द का अर्थ है, उस अक्षर का अर्थ है टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, सेलेक्ट करना, चूज करना, उस वृ अक्षर का एक मीनिंग है। और क शब्द का हैप्पीनेस, कि मैं दुनिया में उस ज्ञान को समझ पाऊं कि वो मेरे जीवन में हैप्पीनेस लेकर आए। और एक दूसरा शब्द वृ का दूसरा अर्थ होता है आवरण, पर्दा, कि कुछ एक बातें हैं जिसने मेरे जीवन के सच्चे आनंद को ढक के रखा है और इस कारण से वो आनंद, वो खुशी मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं और उसकी तलाश में हूं कि ऐसी कौन सी बात हमें समझ में आ जाए तो मेरे भीतर में छुपा हुआ आनंद उसको मैं अनुभव कर सकूं, बाहर में उसको तलाशने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़े। तो वृक्ष प्लस असुर, और असुर का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब क्या होता है, सुर माना जब हम कहते हैं देवासुर संग्राम हुआ तो क्या कहते हैं, सुर और असुरों का संग्राम हुआ। तो सुर माना कौन, देव, और देव माना क्या, बुद्धि, डिवाइन है, दिव्य है। तो इसका अपोजिट अगर कर ले, असुर माना क्या, जिसकी बुद्धि डिवाइन नहीं है, जिसमें डिविनिटी नहीं है, जिसमें दिव्यता नहीं है। अर्थात वृकासुर एक इंसान ही है, कोई ऐसे बड़े बड़े सिंग वाला, बड़ी बड़ी मूछे, काला काला रंग, भयानक, ऐसे कोई असुर नहीं होते हैं। अंतर सुर और असुर में क्या अंतर है, सुर बाबा कहते हैं ना कि देवता भी क्या देखा जाए तो एक तरीके से मनुष्य ही है, दो हाथ दो पैर जैसे मनुष्यों को है वैसे ही देवी देवताओं को भी है। पर क्यों उनको मनुष्य न कहकर हम देवी देवता कह रहे, क्योंकि उनके पास दिव्यता है और उस दिव्यता से वो दिव्य मनुष्य, और दिव्य मनुष्य को कह दिया देवता। ऐसे ही असुर माना जो उसका अपोजिट है, परंतु है तो मनुष्य ही ना, है तो वो मनुष्य ही। तो वो जो वृकासुर की कहानी है कि उसको एक बार नारद जी मिल गए, समझ में आया, नारद जी मिले तो उसके मन में प्रश्न था, उसको देखा, पूछा, जो तीन देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको, इनमें से जल्दी कौन प्रसन्न होता है, किसकी आराधना करने से कौन इनमें से जल्दी प्रसन्न होगा और वर प्रदान करेगा। तो नारद जी ने कहा, क्योंकि भक्ति में तो शिव और शंकर मिला दिया है ना, तो उन्होंने कहा शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होके वर भी देते हैं। और फिर बताते हैं कि नारद जी से ये बात जानकर उसने अपनी आराधना आरंभ की, गया केदारनाथ, सामने अग्नि कुंड बनाया, क्योंकि अग्नि को शिव का मुख माना जाता है, ऐसे उसमें कहानी में बताते हैं, और तपस्या करने लगा। और उस तपस्या के दौरान मांस के टुकड़े भी निकाल निकाल के डाल रहा है। 6 दिन बीत गए हैं, 7वां दिन आ गया है, क्योंकि नारद जी ने कहा था ये जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, पर ये तो अभी 7वां दिन हो गया, अभी तक प्रसन्न नहीं हुए, तो गला काटने वाला था, सपने में शिव जी आ गए और जो उसने हवन कुंड में अग्नि में मांस के टुकड़े भी डाले थे वो उसके वापस वो पूर्ण बन गया और कहा बोलो क्या वर चाहिए। तो कहा मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए और जब सामने से ऑफर किया है तो बोल तो नहीं सकते नहीं, थोड़ा सा रुके जरूर, मतलब कहानी ऐसे आती है और फिर तथास्तु बोल दिया। और जैसे ही तथास्तु बोला इस वृकासुर को, मतलब जिसकी बुद्धि तेजी नहीं है उसको आता है कि इस वर का एविडेंस यहीं पे ले लेते हैं, प्रूफ मिल जाना चाहिए ना कि वर ठीक है या नहीं, तो देने वाले के ऊपर ही हाथ रख दें तो एविडेंस मिल जाएगा कि सचमुच ये वर काम करने वाला है। और फिर इस लक्ष्य से उसने हाथ बढ़ाया शिव जी के सिर पर रखने के लिए और शिव जी भागे 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 और ऐसा भागे हैं कि बहुत दूर दूर तक दूर दूर तक गए हैं, परंतु न शिव जी इसको पकड़ में आ रहे और न शिव जी का भागना बंद हो रहा है, मतलब दौड़ना चालू है। और तब कहीं क्षितिज माना जहां हमको लगता है कि धरती खत्म हो रही, उसके दूसरे कोने पे जाके छिपे और तब फिर देखते हैं, क्योंकि ये तो दौड़ ही रहा है, वो थोड़ा आगे है, शिव जी आगे ये पीछे है और दोनों दौड़े जा रहे हैं। और जब शिव जी ने देखा कि ये तो पीछा किया हुआ ही है तो वो जाके आखिर एक नई युक्ति रची, उसके पीछे चले गए और इधर से, क्योंकि अभी दूरी है उसकी, इधर से कहते विष्णु जी बटुक के रूप में ब्रह्मचारी छोटा, जैसे वामन अवतार में बताया, ये वामन अवतार नहीं था पर ऐसे बताते हैं, छोटा ब्रह्मचारी के रूप में उसके सामने आया और कम्युनिकेशन स्किल के साथ उसको कन्विंस किया। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम सीखते हैं ना, तो कहते हैं विष्णु जी को आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है और उसने उससे बातचीत करना आरंभ की कि अरे भाई दैत्यराज राक्षसराज असुरराज आप ऐसे भागे भागे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप बहुत थके थके महसूस हो रहे हैं, आपको पता है ये शरीर ही सब कार्यों को सिद्ध करने में काम आता है, क्यों उसको इतना थका रहे हो, थोड़ा विश्राम कीजिए। और चूंकि इसके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन थी, उसकी बोली में वो दम था, ये उसकी बातों में थका तो था ही ना, तो विश्राम करने बैठ गया। और जैसे बैठ गया तो विष्णु जी आगे पूछते, मतलब बट्टू ब्रह्मचारी आगे पूछते हैं, बोलो क्यों आखिर तुमको इस प्रकार से दौड़ने की आवश्यकता पड़ गई। और इतने में वो खुल गया, सारा किस्सा सुना दिया। तो कहते तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, और जिसने तुम्हें वर दिया है वो तो इतना शक्तिशाली होता है वर देने वाला कि उसके ऊपर उनका वर थोड़ी काम करने वाला है, उसके ऊपर तुम टेस्टिंग क्यों करने जा रहे हो। तो कहता है नहीं मुझे करना है। तो कहा मैं उसकी आर्ट आपको दूंगा कि आपका वर काम करेगा या नहीं करेगा, मैं उसकी आर्ट आपको सिखाता हूं। तो कहा कि उसने थोड़ी सी नृत्य की, माना दो अलग अलग वर्षन आते, किसी में बट्टुक ब्रह्मचारी बताया जाता है, किसी में बताते मोहिनी अवतार, क्योंकि बहुत सारे वर्षन आते कहानियों के, उनको तो कहानी का सार समझाना होता है। जैसे कहा ना भेड़िये की कहानी भी आप कितने रीति से बताते, भेड़िया और मेमना, भेड़िया और सारस, भेड़िया और हाथी, सब कहानी में सार यही रहेगा कि भेड़िये की अक्कल कैसी होती है। तो यहाँ पर भी शास्त्रकारों ने जो कहानियां बनाई उनको सार देना था, तो किसी में बटुक ब्रह्मचारी बता दिया, किसी में मोहिनी अवतार बता दिया, और मतलब उसको अपने मोह पाश में बांधने की बात बताई कि वहां से उसका अट्रैक्शन जो था उसको कट कर दिया। तो यहाँ पर उसको बताता है वो मट्टुक ब्रह्मचारी कि इसके लिए है ना, आप उसके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आपको अपने ऊपर ही हाथ रखना पड़ेगा ना कि ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। चूंकि जब व्यक्ति थका हुआ रहता है, और जैसे ही कहा कि वृ शब्द का आवरण भी था तो बुद्धि पे आवरण भी आ जाता है। लॉजिकल माइंड जो होता है, आप देखो जब बहुत थके होते हो उस समय किसी से कोई लॉजिकल बात पूछो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी मत पूछो मुझे नींद आ रही है। दुनिया को इतनी सलाह देते हो, मेरे को नहीं देते हो आप? अरे भाई मैं अभी बहुत थकी हूं। लेकिन दूसरे दिन कोई दूसरा आ गया, उसने सलाह पूछी, बुद्धिमानी क्यों? देखो उसको आप फटाफट सलाह देते हो, अरे मैं रात को थकी थी, उस समय दिमाग काम नहीं करता है। तो वो भी थका था, विश्राम करने के लिए दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातों से उसको कन्विंस कर रहा है, तो उसका लॉजिकल माइंड नहीं काम करना बंद कर दिया। और इसने जैसे, क्योंकि उसने तो देखा नहीं मेरा हितैषी है, मुझे बिठाया है, मेरी प्रॉब्लम को समझा है, तो कहां उसको डाउट आएगा कि ये मेरे को ही भस्म करने जा रहा है। तो उसने कहा इसकी तो चेकिंग आपको अपने ऊपर ही हाथ रखने से करनी पड़ेगी, और अपने ऊपर हाथ रखा उसने और वो भस्म हुआ। और जब वर मांगा है तब नाम उसका भस्मासुर, क्योंकि वर क्या मांगा, जब मैं किसी पर हाथ रखूं, तो उसने तथास्तु कहा और शिवजी ने कहा ठीक है आज से तुम वृकासुर नहीं, आज से तुम भस्मासुर। ये कहानी है। इसका मोरल हम ये भी निकाल सकते हैं, जो दूसरों का बिगाड़ने जाता है उसका खुद का बिगड़ जाता है। लेकिन अब जब एग्जाम पास में आ रही हो, वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा ना, और गहराई में उतरना होगा। ये हमारे तपस्या की बात है। क्या तपस्या की बात है कि हमने क्या चाहा कि हम जब, मन वृकासुर ने क्या चाहा कि जब मैं किसी पर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। और भस्म का अर्थ क्या है यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। जब किसी चीज को, पहले ही बताया ना बुद्धि का इसका कनेक्शन वृ शब्द का है ना, तो जब किसी चीज को एनालाइज करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, वो चीज आपको लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? समझो मुझे रसगुल्ला दिया गया है और कहा ये बताओ तो सही ये किससे बना हुआ है। रसगुल्ला जिसने पहले भी खाया हुआ है, लेकिन ये बहन जी ये थोड़ा सा ना अलग लग रहा है, आप बनाते हो ना वो थोड़ा अलग होता है, जरा दिखाओ, मुंह में डाला, हाँ इसमें ना इनकी शक्कर की मात्रा, इनके नमक की मात्रा, इनके इसकी मात्रा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एनालाइज किया ना तुमने, क्या किया, रसगुल्ला तो एक पूरा था लेकिन आपने उसके टुकड़े कर दिए, अभी इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है, शक्कर थोड़ा कम है, घी थोड़ा ये है वो, वॉट एवर। समझ में आ रहा है कि किसी चीज को जब एनालाइज करना होगा तो उसको पृथक पृथक करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। यहाँ पे वो भस्म नहीं है कि जो खत्म हो जाए, समझ में आ रही बात, टुकड़े टुकड़े, हिज्जे हिज्जे, हिस्से हिस्से। जैसे मैंने एक लिस्ट दी घर में बड़ों को कि ये सामान मुझे चाहिए, थैली मांगी बड़े ने, समझो पिताजी जो भी ला रहे मुझे थैली दो सामान दिया है, उसमें चावल भी आया है, उसमें किराने का सामान भी आया है, उसमें सब्जियां भी आई है, उसमें दूध भी आया, आप क्या करोगे? अभी अलग अलग करोगे ना, और बोलेंगे देखो तुम्हारा खर्चा कितना है, तो आप बोलेंगे मेरा खर्चा थोड़ी है, तो सब खाते, ये तो ये सिर्फ ये चीज मैंने मंगाई है अपने लिए, बाकी तो सबका खर्चा है। तो आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, पृथक पृथक कर रहे हो, और फिर पृथक पृथक करके फिर ऐसा होल भी कर देते हो, ये है ना बुद्धि का काम। तो वो क्या कर रहा है कि जब मैं किसी पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, अर्थात मैं जब कोई भी चीज समझने की कोशिश करूं तो मुझे अच्छी से समझ में आए। परंतु वो वृकासुर था, अर्थात जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं थी, अर्थात बुद्धिमान तो था, मटेरियलिस्टिक बुद्धि उसके पास थी और मटेरियलिस्टिक बुद्धि के अनुसार उसको पता था कि कोई चीज जब समझनी होती है तो उसको पृथक पृथक करना होता है। लेकिन अब उसके मन में ये आराधना क्यों करने जा रहा है कि मैं विश्व का अधिपति बन जाऊं। बुद्धिमान तो था ही वो, पर सिर्फ बुद्धि मटेरियलिस्टिक थी, भौतिकवादी वाली थी। लेकिन वो क्या बनने जा रहा है, अधिपति बनना है मुझे विश्व का। और उसने सोचा विश्व का अधिपति बनने के लिए भी यही मेथड होगी। परंतु उसने बताया कि इसीलिए उसने वही मेथड समझ के उसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, अर्थात शिवजी को भी अपनी मटेरियलिस्टिक बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा था। जैसे चीजों को हम पृथक पृथक करके समझते हैं, ऐसा उसको भी वो समझने की कोशिश कर रहा था। और भगवान को तो मालूम है कि मटेरियलिस्टिक बुद्धि से भगवान को समझा नहीं जा सकता है, मटेरियलिस्टिक बुद्धि से भगवान हाथ में कभी नहीं आता है। इसीलिए देखो बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं, तुमने बाप को ढूंढा या बाप ने तुमको ढूंढ कर निकाला। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, पर वो हमारी मेहनत जो थी, वो हमारे जो कदम थे, वो सही थे ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे कदम बाह्य दुनिया वाले थे। बाह्य रीति से उपवास कर रहे हैं, बाह्य रीति से जप कर रहे हैं, बाह्य रीति से वो हठासन कर रहे हैं, और वो तो अंदर की बात है। शरीर से थोड़ी भगवान मिलना है, भगवान शरीर को थोड़ी मिलेगा, आत्मा को मिलेगा शरीर भगवान। तो भगवान तो आत्मा को मिलेगा, और इसलिए कहा कि वृकासुर को भले वरदान भी मिला है लेकिन उसी पर वो टेस्टिंग कर रहा है। तो अभी तुम आत्मा ही नहीं बने हो, परमात्मा को समझोगे कैसा? तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी भागने की, एक असुर के कारण भागते बैठेगा क्या? सोचने की बात है, इतना सर्वशक्तिमान एक असुर के कारण भागता रहेगा? पर बात यह है कि भगवान आपकी पकड़ में नहीं आएगा। और फिर इसमें हम दौड़ते रहे और हमारे रास्ते में वो बटुक ब्रह्मचारी आ गया। समझ में आ रही, आ गई ना ब्राह्मण या ब्रह्म कुमारी या सबके जीवन में, तभी तो आए ना आप लोग यहाँ पे। ये सब बहनें जो यहाँ बैठी हैं, ये आप सबके जीवन में आई या नहीं आई? और इन बहनों के जीवन में इनके बड़े आए, ऐसा ही हुआ ना? तो जीवन में फिर बटुक आ जाता है, ब्रह्मचारी आता है, और वो कहता है बाहर हाथ माना, बाहर की दुनिया में मन बुद्धि को टिकाते रहोगे कभी सुख हाथ नहीं आएगा, न भगवान हाथ आएगा। तुम्हें सुख चाहिए, सुख मिलेगा, परंतु ये मेथड से नहीं। मेथड होगी हाथ तुम्हारा बाहर जा रहा है, इस हाथ को टर्न करके अंदर लेके जाओ, जो हमने पहले दिन ही बताया था कि मन के मौन में करना क्या है। ये 3-4 दिन जो तपस्या के लिए मिले हैं, क्या करना है, ये जो एक एक घंटे का योग बिना कमेंट्री के आपको ऐसे ही छोड़ दिया कि एकांत में आप तपस्या करो, किस लिए? सिर्फ बाहर से सुनते रहेंगे उससे नहीं, जो सुना अब अंदर उतरो। तो उस बटुक ने यही कहा, मैं तुम्हें आर्ट सिखाता हूं, अपने ऊपर हाथ रखो। तो कहा जैसे हाथ, क्योंकि वर क्या था, हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, अर्थात जैसे ही अंदर जाओगे, जो पहले दिन का मन बुद्धि सिर्फ इंद्रियों के गलियारे में खड़े होकर बाहर झांक रहा है, भगवान के बन जाने के बाद भी हमको लगता है सुख बाहर मिलेगा। जब तक भगवान के नहीं बने थे चलो तब तक तो ठीक था कि अज्ञानता थी, लेकिन भगवान के बन जाने के बाद भी ये मन बुद्धि गलियारे छोड़ता ही नहीं बाहर के, बाहर ही झांकना है, नहीं होगा उससे। अंदर जब जाओगे तो जो ज्ञान सुना तो वो ज्ञान अब अंदर में स्मरण में, लक्ष्य भी तो रखेंगे ना हम, तभी हम क्या कह रहे थे, हर दिन क्या आपको रिमाइंड करा रहे, जो ज्ञान सुन रहे हैं फिर एकांत के क्षणों में बैठकर भीतर जाओ, अपने आप से बात करो बाबा, क्योंकि ज्ञान भी जो टीचर्स स्पीकर्स आ रहे मुरली में से ही सुना रहे, सिर्फ सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, है तो बाबा का ही ज्ञान ना, और उसके आधार से देखो बाबा क्या कह रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। और सचमुच अगर मुझे लक्ष्य क्या है, संपन्न बनना है, लक्ष्य क्या है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। क्या है डेफिनेशन मुक्ति, जीवन मुक्ति की क्या डेफिनेशन है मुक्ति की? जब हम कहते हैं मुक्ति पाना है, किस चीज से मुक्ति पाना है? सिर्फ इससे, इससे भी मुक्ति माना ही वो जीवन मुक्ति, वो जीवन मुक्ति, मुक्ति की बात पूछ रही हूं मैं। मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है? देखो हम परमधाम से जब आए थे सिर्फ और सिर्फ आत्मा थे, सिर्फ और सिर्फ आत्मा थे, नीचे आके शरीर लिया, शरीर से क्रियाकलाप आरंभ किए और बाहर का डेटा अंदर डालते गए, एक एक इंद्रिय से डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं ना हम, आंखों से दृश्य कलेक्ट कर रहे, माना दृश्य में एक सुंदर सीन भी हो सकती है, मैंने फलाने को उसके साथ बात करते हुए वो भी हो सकता है, दृश्य माना यही होता है ना, दृश्य माना सिर्फ पहाड़ देखा उसको थोड़ी बोलते हैं, मैंने उन दोनों को देखा वो अकेले में कुछ कुछ बोल रहे थे, सुनना माना सिर्फ टेप रिकॉर्ड से गाना बज रहा है उसको नहीं, अनाउंसमेंट नहीं, अरे वो लोग दो बात कर रहे थे ना, मैंने ये वाली बात सुन ली उसकी, समझ में आ रही बात? तो हम कलेक्ट करते गए और आत्मा के ऊपर लेयर्स 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 चढ़ती गई। द्वापर में आए तो टोटली बाबा ने कहा कि तुम सत्युग और त्रेता में थे तो नेचुरल सोल कॉन्शियस थे, लेकिन द्वापर में आए तो सोल कॉन्शियस भी चली गई। तो सोल कॉन्शियस चली गई तो बॉडी कॉन्शियस के आधार से तो हमने, बाबा ने ये बता दिया ना, बॉडी कॉन्शियस है तो ही फिर अहम, तो ही फिर लोभ लालच ये सब आते हैं, उन सब की लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, और जिस कारण से हम उसके आधार से अपनी आइडेंटिटी देते हैं, कौन हूं मैं, आज भी हम वो जो पहला लेसन तो हमने क्रॉस कर लिया कि जिसमें हम बताते मैं देहनी आत्मा हूं। हाँ, हम जो बता भाई साहब आप बोलते मैं इंजीनियर हूं, पर ये इंजीनियर कौन बना इंजीनियर? लेकिन आज भी हमको कभी कभी क्या नशा होता है, कौन हूं मैं 20 साल से बाबा का बच्चा हूं। कौन हूं मैं सीनियर टीचर हूं। समझ में आ रही बातें? तो मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो ये जो इसके ऊपर लेयर्स चढ़ी हैं, इनसे फ्री होना, इसको तो मुक्ति बोलते हैं। तो इनसे फ्री कैसे होंगी? जब अंदर जाएंगे, बाबा ने जो कहा और जो हमारे जीवन में है, दिल पर हाथ रखकर, क्या ये मेरे जीवन में होना चाहिए? अपने आप से बात करनी है, सेल्फ टॉक, सेल्फ डायलॉग, सेल्फ के साथ अपॉइंटमेंट एकांत में होगा। बातें इसे उसे हो रही या गीत सुन रहे उससे नहीं हो रहा है। अपने आप से बातें करनी है, और जब ये बातें करेंगे तो अंदर से, तब कहा कि अभी भी हम क्या करते हैं, अंदर जाके भी सोचते ही रहते हैं बहुत। जो हमने पहले दिन भी कहा, अंतरात्मा की आवाज सुनना है, अंतरात्मा की, अपनी प्रोसेसिंग ऑफ थिंकिंग को भी स्टॉप। वो जब दो दिखेंगे, अंतरात्मा बोलेगी ये ठीक नहीं है, इसको ड्रॉप कर दो, इस सब को जो पकड़ के बैठे हो इसको ड्रॉप कर दो। और जैसे ही उसको ड्रॉप करेंगे, जैसे ही बादल छटे, सूर्य के दर्शन हो गए, अंतरात्मा। तो हम जो पहले लेसन में सिखाते हैं ना जिज्ञासियों को, कि देखो इंग्लिश में मनुष्य को कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डूइंग थोड़ी कहते हैं, लेकिन हम तो डूइंग डूइंग होके चल रहे, बीइंग तो है नहीं। तो हम भी अंदर में जाके अभी भी से डूइंग डूइंग कर रहे हैं। सोचने पे सोचना भी तो डूइंग है, सोचना भी तो डूइंग है, बीइंग में कब आएंगे? वो जब बादल छटेंगे तो बीइंग के दर्शन होंगे। वो बीइंग इतनी सुंदर, इतनी दिव्य, इतनी प्रकाशित, इतने सुंदर उसके वाइब्रेशन, कि हम उसमें ही मंत्र मुक्त हो जाएंगे। और न सिर्फ मंत्र मुक्त हो जाएंगे, तब कहा जिसकी रचना इतनी सुंदर, उस पर ध्यान चला जाएगा, उसके साथ कनेक्ट होंगे। और अभी तो थोड़ी से बादल छटे हैं, परमानेंट एक होता है बादल गिर के बरस के खत्म होना, और एक होता है बादल सरक के रास्ता साफ होना। तो अभी सिर्फ क्या हो रहे हैं, बादल सरक रहे हैं, बादल सरकेंगे और वह दिव्य रूप आएगा, और उस दिव्य रूप माना ही उसकी दिव्यता वाली फ्रीक्वेंसी में हम आ गए। तो अब उसको याद करते ही कनेक्शन जुड़ेगा, और उसके साथ कनेक्शन जुड़ते ही उसकी पावर्स काम करेगी, इन बादलों को बरसा के गिरा के खत्म, जिसको ही हम कह रहे हैं विकर्म विनाश। क्या कहा उसने, मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भस्म होने का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज को आप चलाएंगे आखिर में जाके राख बच जाएगी, उस राख को ही तो भस्म कहते हैं, उस राख को ही तो भस्म कहते हैं। तो जैसे कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, वहां लेके गए जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है उस स्थान पे सब कुछ जो भी हमको करना था वो सब कर दिया, मुखाग्नि फिर सब दूर हट गए, अग्नि ने अपना काम किया, जिस नाम से जिस रूप से उसको देखते थे अभी वो रूप मिलेगा वहां पे? वो रूप नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं भस्म। तो जब परमात्मा से वो पावर आएगी तो जिस रूप से मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं तो सीनियर टीचर हूँ, मैं तो 30 साल का बाबा का बच्चा हूँ, ये तो अभी 5 साल का बच्चा है, ये तो अभी अभी आई हुई टीचर है, तो सिर्फ ये नहीं, मैं सिर्फ संदर्भ दे रही हूँ, इस प्रकार की और सारी जो बातें होती है वो सब समझ में आ गया? वो सारे क्या होंगे? चलेंगे। और वो जो धूल बची ना, जैसे किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार किया तो क्या बचा? इन 5 तत्वों से ये सब बना था, इतना अभिमान किया था, जाके क्या बने हो? ये 5 तत्व नहीं होते तुम्हारा शरीर निर्माण नहीं होता। ऐसे ही ये जब छटेंगे, ये आत्मा है तो जीवन है, आत्मा ही नहीं तो जीवन कहां से? तो सार पकड़ में आएगा, अर्थात फिर ये जो हम हदें हैं ना, ये सब ये हदें हैं, इन हदों से निकलकर हम बेहद में आएंगे, असत से निकलकर सत में आएंगे, ये मुक्ति होगी तो फिर जीवन मुक्ति तो इसी के आधार से है ना, इसी के आधार से है ना जीवन मुक्ति। तो जैसे बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति जो द्वापर से आने वाली आत्मा उनको भी मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई आत्मा ऊपर से नीचे आएगी वो तो बिल्कुल शुद्ध रूप में आएगी, लेकिन शुद्धता की इंटेंसिटी डिफरेंट होने के कारण उनकी जीवन मुक्ति भले होगी शुरू के दिनों में, शॉर्ट पीरियड में और शॉर्ट अवेलेबिलिटी में। अब सोचो सत्युग जब आरंभ होगा, जो पहले जन्म में आएगा, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होंगे सिर्फ 9 लाख में बटेंगे, इसीलिए एक एक के हिस्से में बहुत सारा आएगा, और इसीलिए इच्छा मात्र अविद्या होगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर एक के पास है। इच्छा रखे तो किस चीज की रखे हम, जरूरत ही नहीं ना। इच्छा तो तब होती है जब किसी चीज की कमी होती है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वही वाले नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा में बटेंगे। घर में एक बच्चा जन्म लेता है सब कुछ उसके लिए, दूसरे ने लिया, तीसरे ने जन्म लिया, बट गया ना उसी में ही। तो हमारी जीवन मुक्ति और उनकी जीवन मुक्ति में अंतर होगा, पर मिलेगी सबको जीवन मुक्ति, परंतु फिर हमारे जाने और उनके जाने में भी अंतर होगा। अगर हम योग अग्नि से विकर्म दग्ध करेंगे तो सलामी करके जाएंगे, और नहीं तो जो हम सभी लेसन में जिज्ञासुओं को बताते हैं, या तो प्यार से, आप सभी जानते हैं अच्छी से लेसन देते हैं तो, और उसका मतलब क्या कि जो चीजें हम लेकर नहीं आए थे बस स्वेच्छा से सेल्फ रियलाइजेशन करके उसको छोड़ा नहीं, तो सफरिंग्स हमारे जीवन में आएगी और वो सफरिंग्स हमारे से छुड़वाएगी, लेकिन सफरिंग्स जब छुड़वाएगी हमें तो वो जो सफरिंग के दौर से हम गुजरेंगे, हमारी अंतमति क्या होगी? जैसे कैमरामैन एक कैमरा जब फोटो लेता है, जैसे अभी हम लोगों ने लिया, क्या कहता है? हंसो हंसो, स्माइल स्माइल, समझो मैंने स्माइल किया भी, लेकिन अभी उसने क्लिक ही नहीं किया, और थोड़ी देर में मेरे को थोड़े से किसी ने हिलाया तो मैंने, और उस समय उसने क्लिक किया, तो जब फोटो सामने ये क्या हुआ, मैं तो स्माइल किया था। समझ में आ रही बात? तो हम कभी कभी इस बात को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, योग अग्नि से नहीं भस्म कर पाए, मार से कर लेंगे, जहां इतनी आत्मा करेगी उतना हम भी कर लेंगे। लेकिन अंतमति सो गति को हमें नहीं भूलना है। तो ये वृकासुर कौन है? ये हमारी कहानी है। ये अंदर में काम क्रोध लोभ मोह स्वार्थवश, स्वार्थ माना, स्वार्थ का भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आता है? स्व प्लस दुनिया में जो पढ़ा था उसके हिसाब से स्व के अर्थ, ये बड़ा स्वार्थी है, सिर्फ स्व के अर्थ करता है। और दुनिया के हिसाब से स्व किसको समझा था? अर्थात जो भौतिकता में रहकर, जिसको कहा अपने भौतिक सुखों के लिए दूसरा जाए जहन्नुम में, कोई परवाह नहीं करते, जो भेड़िए का एग्जाम्पल दिया उसको बोलते हैं स्वार्थी। लेकिन अब तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, अब स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ माना स्व का रथ, जैसे रसोई घर माना रसोई का घर, यही होता है ना, तो स्व का रथ है ये। तो भगवान कहता है दुनिया में जो तुमने स्वार्थ सोचा था वो स्व का रथ था, असल में स्व के लिए तो तुमने कभी किया ही नहीं, जो कुछ किया स्व के रथ के लिए क्या, और जब स्व के रथ के लिए करते हैं तो दूसरा जाए उसका कभी नहीं सोचते हैं। फिर उसके लिए काम क्रोध लोभ मोह चाहे जो भी इमोशंस आनी है उसको जायज समझते हैं। परंतु अगर इसको स्व समझेंगे तो कदापि काम क्रोध लोभ नहीं आएगा। तो हमें एकांत में बैठकर तपस्या में बैठकर क्या करना था? ऐसी हमारे जीवन की कोई घटनाएं कि जहां किसी के साथ कुछ चल रहा है, होता रहता है सबके साथ कुछ कुछ, तो वो मुझे क्या करना था? भस्म करना था। तब कहा कि भस्म जब होता है तो वो आत्मा सिर्फ रह जाएगी, ये सब भस्म हो जाएगा, रह जाएगी आत्मा। और वो आत्मा स्वच्छ बुद्धि, जिसको कहा ना स्वच्छ बुद्धि, तो जितनी ज्यादा बुद्धि स्वच्छ होगी फिर उतना ज्यादा बाबा के दिए हुए ज्ञान रतन बुद्धि में ज्यादा ठहरेंगे, उतना ज्यादा हमारे जीवन में जो बातें आ रही है हम उनको दूर से ही क्रॉस कर लेंगे। पहले तो अंदर आने देते थे, अभी अंदर भी आने नहीं देंगे। तो हम स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि रहकर जब हम दूसरों को रत्न बांटेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी सेवा होगी, उन सेवाओं की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। और उन दुआओं से, जैसे बाबा कहता है, दुआएं तो रॉकेट से भी तेज उड़ाकर लेकर जाती है, और दिन दुनी रात चौगुनी हमारी तरक्की होगी। तो बहुत समय बीत गया है, परीक्षा बहुत बहुत करीब है, ये सबको अंडरलाइन करना है। अब गफलत में नहीं रहना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, इस पर अटेंशन। और उसके लिए जरूरी है एकांत, अंदर में जाओ। सेल्फ रियलाइजेशन का इतना सा ही मतलब नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इतना सा मतलब नहीं है। मैं अगर हूं शांत स्वरूप तो मैं परिस्थितियों में अशांत क्यों हो रही हूं? मैं अगर हूं आनंद स्वरूप, मैं बाहर की दुनिया में सुख क्यों ढूंढ रही हूं? मैं अगर हूं प्रेम स्वरूप तो बाहर की दुनिया में इंटरेक्शन के समय वो प्रेम कहां गायब हो जाता है मेरा? तो मैं हूं जरूर, नो डाउट, पर उसके ऊपर बादल चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर काली मां चढ़ी हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। एक लालटेन में तेल भी भरना होता है, बत्ती भी अच्छी डालनी होती है और कांच को भी साफ करना होता है। ये है सच्ची तपस्या और इसीलिए आपको एकांत का समय दिया जा रहा था कि जिस एकांत में बैठकर वो लालटेन के कांच में जो काली मां चढ़ी हुई है उसको थोड़ा थोड़ा साफ करते जाओ। तो आत्मा तो है ही, शुद्ध स्वरूप है ही, प्रेम स्वरूप है ही, पर बाहर क्यों नहीं आ रहा है? वो काली मां उसको बाहर आने नहीं दे रही है। तो वृकासुर बना भस्मासुर, हाथ ऐसा नहीं, हाथ ऐसा, बाहर की दुनिया में नहीं अंदर की दुनिया में प्रवेश करेंगे, तब खुद को भी प्राप्त कर सकोगे और जब खुद को पाओगे तो खुदा को पाओगे और जब खुदा को पाओगे तो खुदा की पावर्स मिलेगी, खुदा की पावर्स मिलेगी तो अंतर आत्मा के ऊपर जो काली मां चढ़ी है वो साफ होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव इसी संगम युग में हम स्वयं करेंगे और अपने जीवन से दूसरों को अनुभव कराते चलेंगे। ओम शांति। पहले योग कर लेते हैं।
अनोखी शक्ति भरी। ओम शांति। पहले तो हम सभी अमरावती जिला जो भी यहाँ पे आए सभी दीदी का जोर से ताली बजा के स्वागत करते हैं। हमारे इधर दीदी दो तालियां चलती है, ये बड़ी मजा आ जाती है ताली बजाने में। तो पहले तो सभी भाई बहनों को तीन दिन से संकल्प चल रहे थे कि 21 तारीख से आपके पहले उषा दीदी तक जो आपका सबको जो आपने एकदम मधुर वाणी से सबका परिचय दिया स्नेह से, तो सभी को लग रहा था कि आपका भी क्लास हो जाए। तो हमको संकल्प आया इसलिए कल हम आपसे मिले कि हमें 5 मिनट दीजिए। तो पहले तो एक बार फिर जोर से तालियां बजाए दीदी के लिए, क्योंकि बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और ये तीनों बातें आप में वरदानी मिल गई है ऑलरेडी। ये तीनों बात तो आप में जैसे है ही। तो एक संकल्प आया दीदी, ब्राह्मण परिवार में ये मधुरता बहुत जरूरी है वाणी की, दुनिया में भी है और हमें भी है। अगर हमें आई तो दुनिया में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये मधुर वाणी आपको गॉडली गिफ्ट है या आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ा, ये थोड़ा सा 5-10 मिनट हमारे भाई बहनों को बताइए। ओम शांति।
पहली बात, हर एक के शरीर भले ही हम कहते हैं दो हाथ दो पैर वाले हैं, फिर भी हर एक के आंखों की बनावट, नाक की बनावट, होठों की बनावट सबकी अलग अलग है। जिसको बाबा कहते हैं एक के फीचर न मिले दूसरे से, तो ऐसे ही हर एक के कंठ की भी अपनी अपनी बनावट है, जहां से आवाज निकलता है। पर बात सिर्फ मधुरता की नहीं होती है, बात होती है कि जैसे हम कहते हैं हम पवित्र आत्मा हैं, जो अभी भी मैंने कहा कि हम हैं डेफिनेटली। देखो बाबा हमें क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो कहते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं तुम पतित बन गए हो और मैं पतित पावन, तुम्हें पावन बनाने हूं। एक तरफ कह रहा है तुम शुद्ध स्वरूप हो और एक तरफ कहता है मैं तुम पतितों को पावन बनाने आया हूं। तो किस आधार से दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं लगती है कि मैं जब हूं ही शुद्ध, मैं जब हूं ही पवित्र। भैया बंद कर दो, ये बात का हिस्सा है। ये हो गया है, बंद कर दो। तो जब हम हैं ही पवित्र, एक जिज्ञासु भी जब आता है ना, तो जिज्ञासु जब आता है तो अपनी अशांति टेंशन को लेकर आता है और सोचता है कि लोगों ने मुझे बताया है ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ वहां शांति मिलेगी, आपको मेडिटेशन कराते हैं और आपको शांति मिलेगी, तो हमारे पास आता है और हम लेसन देना शुरू करते हैं। तो बोलते बहन जी मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, मुझे मेडिटेशन कराओ, मुझे शांति चाहिए। तो बहन जी क्या कहती, भाई साहब आप तो हो ही शांत स्वरूप, कहते हो नहीं कहते हो कि भाई साहब आप तो हो ही शांत स्वरूप, ये है ना आपकी थिंकिंग को बदलना है, और थिंकिंग कैसे बदले उसके लिए आपको पहले लेसन करना होगा। तो हम भी तो वही कहते हैं, एक अशांत व्यक्ति भी हमारे पास आता है, एक गुस्से वाला व्यक्ति भी हमारे पास आता है, जिसके अंदर में नफरत भरी हुई वो व्यक्ति भी हमारे पास आता है, जो अंदर से पूरा टूट चुका है वो व्यक्ति भी आता है। हम उनको क्या कहते, आप तो हो ही शक्ति स्वरूप आत्मा, आप तो हो ही प्रेम स्वरूप आत्मा। हम बोल रहे तुम हो प्रेम स्वरूप, तुम शक्ति स्वरूप, फिर बोलते मांगो, क्या ये क्या बात है। तो बात ये है कि मैं सचमुच आज भी इस कलयुग के अंत तक, जहां बाबा कहते आत्मा पतित हो गई है, आत्मा प्योर है, पतित है उसके चारों ओर का आवरण। और चूंकि उस आत्मा का, उस ज्योति का प्रकाश उस आवरण को क्रॉस करके ही बाहर आने वाला है, तो चूंकि उस आवरण को ही नहीं तोड़ा है इसलिए वो प्रेम स्वरूप अनुभव में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम इस बात पर जोर डाल रहे हैं एकांत में बैठो, सफाई करो, वरना कमेंट्री बहुत अच्छी चली, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की किरणें निकल रही है और पूरे विश्व में फैल रही है, मैं भी शांति का अनुभव कर रही हूँ और विश्व में भी शांति फैल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ये रॉन्ग है, ये भी राइट है। प्राइमरी बच्चे की पढ़ाई, सेकेंडरी बच्चे की पढ़ाई, कॉलेज वाले की पढ़ाई, अंतर होगा नहीं होगा? तो ये माना हम ये बता रहे हैं हमारा है, परंतु फिर भी नहीं अनुभव हो रहा तो कहां गड़बड़ है? तो अरे कांच साफ नहीं किया अभी तक मैंने, अभी तक मैंने कांच ही साफ नहीं किया है, अभी तक मैं जो आत्मा आत्मा की दृष्टि से मुझे देखना था सबको वो नहीं है, तभी तो आपस में लोभ और लालच और अहंकार आ रहा है। अगर मैं आत्मा की दृष्टि से सही में किसी को देखूं, उसके साथ मेरी अनबन क्यों खड़ी हो, क्यों खड़ी हो, नहीं हो सकती है। तो आपने जो बात मेन प्रश्न था कि ये मधुरता नेचुरल है या इससे आई है, तो मैं वही कहने जा रही हूं, पवित्रता माना ही फिर सत्यता, कि आप सत्य स्वरूप में टिको। हम पवित्र, हम क्या बोलते हैं, योगी भव। तो हम इस जीवन में जब आ गए पवित्र भव जीवन में, तो मुझे हमेशा अपने सत्य स्वरूप पर टिकना है, और मैं सत्य स्वरूप में जितना ज्यादा टिकूंगी, धैर्यता अपने आप आएगी। जितनी ज्यादा धैर्यता आएगी, उतनी ज्यादा नम्रता अपने आप आएगी। जितनी ज्यादा नम्रता आएगी, उतनी ज्यादा मधुरता अपने आप आएगी। तो इसलिए आप नोटिस करो कि हम ये नहीं कह रहे कि हम 24 घंटा सोल कॉन्शियस रहते, कभी अटेंशन रहता है। हम क्या कहते हो ट्रांसपोर्ट वाले, सावधानी हटी। तो बाबा को भी कई बच्चे कहते, बाबा हमने अच्छे अच्छे महारथियों को भी देखा है, गुस्सा करते हैं। तो बाबा क्या जवाब देते हैं, जिस घड़ी आपने महारथी को गुस्सा करते हुए देखा, उस घड़ी वो महारथी है ही नहीं। रथी माना क्या, रथ में जो सवार है। अब रथी का उसको कॉन्शियस ही नहीं, तो रथी ही नहीं बना है, महारथी काय का है वो। रथी का मतलब है जो रथ में सवार है उसको कॉन्शियस है कि मैं रथवान हूँ, अर्थात मुझे कॉन्शियस है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। और ऐसे में मैं कहूँ कि मेरे से गुस्सा हो जाए, लेकिन जब मैं उस स्मृति से हटी, दुर्घटना घट गई। तो इसीलिए अभी वर्तमान में जो पुरुषार्थ है अटेंशन का है, सिर्फ अटेंशन देना है कि मैं ट्रैक से नीचे तो नहीं उतर के आ गई हूँ, फिर वापस ट्रैक पर लेके जाना है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते थे, सुई उस पर घूमती थी, और कभी कभी रिकॉर्ड में कुछ वो स्क्रैच हो गया तो सुई बार बार वहीं जाके अटकती है, फिर हम क्या करते हैं, हाथ से उठा के। तो यहाँ पर भी ना अटकती रहती है सुई। अब देखना कोई बात हो जाती है अंदर में, सिर्फ उठते बैठते खाते पीते वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही सुई जाके वही अटक गई। अभी अभी मैंने सोचा नहीं, मैं अभी तो अच्छे से क्लास सुन के आऊंगी और वही चिंतन करूंगी, 2-3-4 मिनट 5 मिनट किया, फिर मेरी सुई उधर चली गई। तो बार बार अटेंशन रखेंगे तो फिर सुई को इधर लेकर आएंगे। तो अटेंशन बहुत रखना पड़ता है, ठीक है। ॐ शान्तिः।